माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदानंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस प्रेरिवजाकाचार्य अष्ट सरस्वत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रेरिवजाकाचार्य अष्ट सरस्वत कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका पुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल गोरिस टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल गोरिस टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल गोरिस टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल गोरिस टू गुरु एंड गौरांग। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के ऊपर चर्चाएं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, अध्याय का नाम है गीता का सार, श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच अशौचान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादन च भासते गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशौचान उन्वसात्वम् प्रज्ञावादश च भासते गत असुन अगत असुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच अशौचान अन्वशौचत्वं प्रज्ञावादश्च भासते गत असुन अगत असुंश्च नानु शोचति पंडिता। श्री भगवान उवाच अशौचान अन्वशौचत्वम् प्रज्ञावादश्च भाषसे गत सुनगत सुंश्च नानु शोचति पंडिता। और कोई वैष्णव शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा अशौचान जो शोक के योग्य नहीं है, अनवशौच शोक करते हो, पम तुम प्रज्ञावादन पंडित पूर्ण बातें च भी भाषो से कहते हो, गत चले गए रहित असुन प्राण अगत नहीं गए असुन प्राण च भी ना कभी नहीं अनुशोचंती शोक करते हैं पंडिता विद्वान लोग। अनुवाद श्री भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षत मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यो नहीं जानते जो विद्वान होता है, अर्थात जो यो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो या मृत्यु शोक नहीं करता। अगले अध्याय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं उन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ये ज्ञान ना था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वो अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वो शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल उसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने की आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वो वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथंवितं तं सजीवं सावधीतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत ही भगवत गीता का बारे में वर्णन है। और महाभारत के आदि पर्व के 14वें अध्याय में ये भगवान इस धराधाम में अवतरण का उद्देश्य बताया गया है। आदि पर्व के 14 अध्याय में बताया गया है, जब ये धरती बहुत पापी राजाओं की बोझ से बोझिला हो गई तो वो माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपना दुख की जानकारी देने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी इस जो इनका समस्या था माता पृथ्वी का जो गो के रूप धारण की थी, उनसे उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो ब्रह्मा जी अन्य सब शिव जी आदि अन्य प्रमुख देवताओं को लेके माता पृथ्वी को की लेके खीर सागर के तट में गए और वहां पर बहुत सारे पुरुष स्तोत्र से भगवान का स्तुति किए। और ये भगवान उनका मन की जो इच्छा को जानकर वहां से ब्रह्मा जी का हृदय में आवाज दिए कि आपका क्या समस्या है, मैं समझ गया हूँ, निकट भविष्य में उसका मैं जाके समाधान कर दूंगा। और आप लोग देवता लोग को सबको कहिए कि आप जाइए और सब यदुवंश में जाके अवतार लीजिए और मैं अभी आके जो ये लीला करूंगा और ये धरती का बोझ जो कम करूंगा उसमें सहायता कीजिए। ऐसा भगवान ने दर्शन नहीं दिए, खाली उनको हृदय में स्फुरित कर दिया। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या बोले वो समझ गए, फिर उसको ही देवता लोक को बोल दिए। तो फिर भगवान इस धराधाम में अवतार लिए थे धरती का बोझ को कम करने के लिए। और जो भगवान सब चीज करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, भगवान क्या करते हैं दूसरा किसी का माध्यम से वो कार्य संपादन करते हैं। जैसे आप लोग हमेशा सुनते हैं भगवान का अर्थ है केवल वो लीला करके आनंद लेते हैं। जो कृष्ण है वो गोलोक वृंदावन में अपना संगियों के साथ नित्य पार्षद के साथ वो लीला करके आनंद लेते हैं। ये सृष्टि का जो रचना होता है उसका फिर पालन होता है, सहारा सहार होता है, वो दूसरा किसी का माध्यम से भगवान करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ शक्तिशाली राक्षस थे जो अन्य किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते थे, तो भगवान ने क्या किया उन सबको अपना हाथों से वध कर दिए। फिर ये जब भगवान का इस धराधाम से फिर अप्रकट होके निजी धाम की समय आ गया, जो बाकी सब जो राक्षस लोग थे उनको वध करने के लिए भगवान ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। क्या योजना था? और कुरुक्षेत्र का युद्ध, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाकी जितना जो दुष्ट राजा थे उनको सब एकत्रित करके धरती का बोझ को कम करना, उसके बाद अपना स्वधाम में जाना चाहते थे। तो भगवान ने ये योजना बनाकर एक ऐसा योजना बनाया कि सब लोग वहां पर एकत्रित हो और सब वापस में लड़के मर जाए। तो ये जो है उद्देश्य थे। और किसी भी कार्य जो युद्ध करने किसी भी कार्य करते हैं ना उसके पीछे पृष्ठभूमि होता है। अभी समझो आप खेती करना चाहते हैं, कुछ भी वस्तु करने से पहले उससे पहले कुछ उसका पूर्व अंग बोलते हैं। अभी जैसे आप पूजा करना चाहते हैं भगवान का, आराधना करना चाहते हैं, चाहे पांच प्रकार से हो या 16 प्रकार से, उसको पंचो उपासना या 16 उपचार बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो उससे पहले 16 उपचार बोलेगा तो 16 प्रकार की वस्तु से भगवान की उपासना होती है। उससे पहले चंदन को आपको घिसना होता है, पुष्प संग्रह करना होता है, सुगंधित जल संग्रह करना होता है, आसन नैवेद्य धूप दीप सब संग्रह करना होता है, वस्त्र इतर सुगंधित जो तेल है सब संग्रह करता है। वो पूजा का पूर्व अंग है, पूजा करने से पहले ये सब वस्तु की आवश्यकता होती है। हमारा वैदिक शास्त्र में उसको पूर्व अंग बताया गया। पूर्व अंग यानी पूजा से पहले की जाने वाले अंग, उसको पूर्व अंग बोलते हैं। किसी भी कार्य आप संपादन हम करते हैं तो उससे पहले हमको एक उससे पहले कुछ करना होता है, उसको पूर्व अंग बोलते हैं। ऐसे ही ये युद्ध से पहले जो भगवान एक पृष्ठभूमि उसका पूर्वांग होता है। तो पहले वास्तव में ये जो भगवद गीता का अध्याय का सब नामकरण किए हैं वो श्रीपाद शंकराचार्य किए हैं, और सब में अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय का नाम रखा, सांख्य योग ज्ञान विज्ञान योग उन्होंने सब ऐसे रखे उसका। क्योंकि शंकराचार्य की परिभाषा में कि ये उपनिषद की उसको व्याख्या दी गई है, तो उसका पूर्व अंग आप किसी भी कार्य देखिए। अभी समझो घर बनाना है, घर बना से पहले आपको क्या पहला जगह लेना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा जो म्युनिसिपैलिटी होता है महानगर पालिका से उनका योजना का अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्लान अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो अभी कभी भी आके बुलडोजर लगा के तोड़ देगा। चाहे तहसीलदार से ग्राम पंचायत से किसी के भी आप कैसा बनाएंगे उसका प्लान अप्रूव्ड होता है, होता है कि नहीं। ये घर बनाने का पूर्व अंग है सब, जमीन लेना पड़ेगा, जाके पहला तहसीलदार से अनुमति लेना पड़ेगा, फिर घर की जो बनाने के लिए जो जो उपकरण की आवश्यकता होती है उसको संग्रह करना पड़ेगा। आपको पत्थर चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा की छड़ी चाहिए, वो तो सब जो एक ढांचा बन गया। उसके बाद प्लम्बिंग, पानी का व्यवस्था के लिए प्लम्बिंग चाहिए, है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको फिर कलर करना है, ये सब घर बनाने के पहले उसका पूर्व अंग है। किसी भी कार्य को ले लीजिए उसका सब। अभी आप पढ़ते हैं आगे चल के भगवान बताएंगे छठा अध्याय में अष्टांग योग, यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो पहले जो पांच को उससे भगवान, योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, धारणा ध्यान समाधि वो आत्मा और परमात्मा के बीच में वहां से संबंध आरंभ होता है, लेकिन उससे जो पहला पांच अंग उसे शरीर को ठीक करने के लिए, उसको भगवान के साथ कोई उसमें संपर्क नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, लेकिन वो उसको पूर्वांग बताया गया। क्योंकि अभी जब भी हम कोई भी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, किसी भी कार्य के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, और शरीर जब भी हमारा सुस्त रहेगा, सबल रहेगा, सटीक रहेगा, तभी हम किसी भी चीज सही ढंग से कर सकते हैं। सब भक्ति विनोद ठाकुर बताए कि स्वास्थ्य साधना फिर सेवा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप क्या करेंगे, साधना अच्छा कर सकते, और साधना जब भी अच्छा होगा तो सेवा भी अच्छा कर सकते। ये सबको जीवन में अनुभव है, जब भी हमको ज्वर हो जाता है, दूसरा कोई भी बीमार हो जाता है, तो हम क्या हतोत्साहित हो जाता है, मन फिर सब चीज करने में पहले जैसा साधारण जैसा वो लगता नहीं है, जप करने को इच्छा नहीं होता है, भगवान का नाम स्मरण करने को इच्छा नहीं होता है, खाने को नहीं उचित, सब कुछ में रुचि क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम क्या करते हैं, साधना, स्वास्थ्य ठीक है, फुर्तीला है तो सब चीज हम अच्छा से करते हैं, साधना अच्छा करते हैं। साधना अच्छा करने से क्या होता है, हमको समझ में आता है सेवा का महत्व। अभी मैं सेवा कर रहा हूं तो हमारा सब खाता में है ना, सब लिखा हुआ है क्या क्या मैं सेवा किया हूं, उसका अनुरूप ही मृत्यु के बाद हमको फल मिलता है। मृत्यु के समय हमारा साथ कुछ नहीं जाता है, हम जीवन भर जो भी कार्यकलाप करते हैं, चाहे पाप होने दो, पुण्य होने दो, या भक्ति होने दो, प्रेम पूर्वक सेवा होने दो भगवान का, वही हमारा साथ में जाता है। तो वो सब क्या होता है, होता है। तो ये जो है यम करने से जो हमको दंड मिल सकता है, नियम क्या करने से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब शरीर के लिए आसन, आपके विभिन्न प्रकार आसन, वज्रासन, ये सब शरीर को ठीक करने के लिए। फिर प्राणायाम बोलेगा तो हम शरीर में दूषित वायु को बाहर निकल का प्रक्रिया है। फिर ये इंद्रिय विषय से इंद्रिय को हटाना प्रत्याहार है, ये सब पूर्वांग है, उसमें भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर जब ये धारणा, यानी आपको अभी समझो किसी चीज को हम उसके बारे में चिंतन करेंगे तो उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, उसको धारणा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं। कुछ आइडिया होगा तो आप ध्यान करेंगे ना, जैसा ध्रुव महाराज, नारद जी मिले ध्रुव महाराज को, वो बोले भगवान का भजन करो, फिर भगवान कैसे दिखते उसका भी स्वरूप का वर्णन किए कि भगवान का ऐसा सुंदर चरण कमल है, उसमें वज्र अंकुश शंख चक्र मीन छत्री चिन्ह से सुशोभित है, लाल कलर का है, फिर वो पायल पहने हैं, पीताम्बर पहने हैं, करधनी है, भी भगवान का स्वरूप का वर्णन किए। बोले ऐसे ही तुम बालू में इधर जमुना तीर में जाओ, स्वरूप बनाओ, और जो भी खाते हो भगवान को अर्पण कर प्रसाद खाओ, और ऐसा भगवान का नाम जप करके स्वरूप का ध्यान करो। तो भगवान के बारे में कुछ जानकारी होगा तभी तो उनका कुछ चिंतन करेंगे, उनका रूप होने दो, लीला होने दो, नाम होने दो। जैसे अभी उस दिन हमारा मुख्य पुजारी महोदय जी भगवान का विभिन्न प्रकार का नाम का अर्थ बता रहे थे, दामोदर का क्या अर्थ है, यशोदानंद का क्या अर्थ है, देवकी नंदन का क्या अर्थ है, तो जब ये पता चलेगा तो हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसको बोलते धारणा, ये वहां से भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापना होती है, लेकिन उससे पहले को पूर्व अंग बोलते हैं। तो भगवान ने क्या किया, पूर्व अंग ज्ञान देना है तो उससे पहले उसका बेस तैयार कर रहे पूर्व अंग। पूर्व अंग में फिर उन्होंने अर्जुन भगवान का नित्य संगी है, नित्य पार्षद है, उनको कोई अज्ञान नहीं, उनको कोई भ्रम नहीं है। लेकिन अभी भगवान सोच रहे थे कि मैं जब भी ये धराधाम से अप्रकट हो जाऊंगा तो ये जो मानव सभ्यता किस प्रकार मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पालन करके जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान धाम तक जा सकते हैं। तो देखिए कि वेद व्यास ने बहुत सारे शास्त्रों का रचना करेंगे, और ये कलयुग का मनुष्य के लिए सब अध्ययन करना, उसको समझ पाना ही बहुत कठिन है, और इतना उसका आयु भी नहीं है, इतना ये नहीं है। चार वेद है, छह वेदांग है, वेदांग के बाद फिर 18 पुराण है, 8 उपपुराण है, उपनिषद है, तंत्र है, संहिताएं हैं। क्या क्या अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद भी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि नहीं, वो भी प्रश्न है। बोलते हैं ना, क्योंकि विभिन्न शास्त्र में विभिन्न मत को बताया गया है, किसी में कर्म प्रधान, किसी में योग प्रधान, किसी में भक्ति प्रधान। तो सब अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए भगवान ने सोचा कि मैं ऐसा कुछ संक्षेप में वैदिक सार का ज्ञान को प्रस्तुत करूंगा कि केवल उतना ही ज्ञान प्राप्त करके पूरा मानव सभ्यता लाभान्वित हो सके। तो उसके लिए उन्होंने अपना नित्य पार्षद अर्जुन को चुना, कि उनको क्या किए, मोह में डाल दिए। तो वो सबकी कल्याण के लिए वो क्या करेगा, अज्ञान ऐसा का नाटक करके वो प्रश्न पूछेगा, फिर वो प्रश्न का उत्तर हम ऐसा देंगे कि पूरा जो वैदिक सार का, साहित्य का सार को संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे, यदि उतना ही अध्ययन करके लोग पूरा वैदिक शास्त्र को समझ सकते हैं। इसके लिए भगवान ने उसको, अर्जुन को चुना। ये है पूर्वंग। तो इससे पहले अर्जुन, फिर युद्ध में दोनों सैनिक एकत्रित हो गए, अर्जुन ने देखना चाहा कि विपक्ष में कौन है, फिर भगवान को बोले कि मैं देखना चाहता हूँ, मेरा रथ को थोड़ा बीच में लेके चलिए। तो अर्जुन, भगवान ने जाके रथ को बीच में खड़ा कर दिए। फिर वो सबको देख कर अर्जुन ने एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में वो युद्ध नहीं करने का कुछ तर्क प्रस्तुत किए, 5 तर्क प्रस्तुत किए भगवान के सामने। भगवान ने बाद में वो तर्क को सब खंडन कर दिया, कि बोला जो जो तर्क प्रस्तुत किए सबको उन्होंने खंडन कर दिया। अर्जुन ने बोले कि देखिए, ये सब सैनिक मारे जाएंगे तो उनका पत्नियां सब विधवा हो जाएंगी, उसको पर पुरुष भोग करेंगे, जिससे बच्चे पैदा होंगे वर्ण संकर होंगे, और वर्ण संकर बच्चे तो नीति नियम का कुछ पालन नहीं करेंगे, पितरों को श्राद्ध नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, हमारा पितरों सब गिर जाएंगे। दूसरा बोले, ये इतना सारे सज्जन है, हमारा ही सब संबंधी है, अगर हम लोग सब उसको मार देंगे, सब संपत्ति का भोग किसके साथ करेंगे, सब भोग संपत्ति भोग किसके साथ किया जाता है, संबंधियों के साथ, ये संबंधी मारे जाएंगे तो संपत्ति किसके साथ भोग करेंगे। फिर बोले, ये गुरुजन है, कैसा मैं उनको ऊपर बाण चलाऊं, आपका गुरु संदीपनी कृष्ण नाना जी उग्रसेन आएंगे तो आप चलाएंगे बाण। और बोले, उन लोग लोभ में आ गए हैं, वो क्या अच्छा ही नहीं जानते हैं, भले ही आतताई है, वो आतताई बोले हम आतताई उनको मारे। अर्जुन सब तर्क बदरे, अगर ठीक है आप बोलते युद्ध करे, और युद्ध हो गया और हमने जीत लिया, तो हमेशा मेरा मन में ये विचार उठता रहेगा, आज मैं जो राज्यों का भोग कर रहा हूं ये मेरा गुरुजनों की रक्त से युक्त है, तो मुझे कभी वो शांति प्रदान नहीं कर पाएगा। ऐसा 5 तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान ने बीच में सबको वितर्क करके उसको समाधान कर दिए। तो ये पूर्व अंग होने के बाद फिर अर्जुन को, अर्जुन बोले कि उनको कुछ, उनका बुद्धि कुछ काम नहीं किया। तो बोले, अभी मेरा कुछ बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मैं आपका शरण में आ गया हूं, मेरा कल्याण जिसमें होगा ऐसा कीजिए। क्योंकि ये एक हमारा वैदिक संस्कृति का शिष्टाचार है। अभी जैसा अर्जुन के साथ भगवान समवयस्क थे, समवयस्क समस्त समस्कन थे, उम्र में सम थे, इसके लिए दोनों के में बहुत अच्छा मित्रता थी। जब भगवान कृष्ण भीम को और युधिष्ठिर महाराज को मिलते थे ना, उनको वयस में बड़े थे, तो उनको जाके उनका चरण स्पर्श करते थे, नकुल सहदेव को मिलते थे, नकुल सहदेव प्रणाम करते थे, उसको कुछ आशीर्वचन देते थे। आप देखेंगे जब भी आप आपका हमारा भागवतम में भी वर्णन है और महाभारत में वर्णन है, जब भी वो खांडव वन जलाए ना, वहाँ पर अर्जुन और कृष्ण गए थे, जब भी कालिंदी से विवाह हुआ था, वो वन विहार करने के लिए गए थे, अर्जुन और कृष्ण गए थे, क्योंकि समवयस्क थे तो दोनों मित्रों की तरह बात कर रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि भगवान की महानता को अर्जुन जानते थे, क्योंकि उससे पहले भगवान ने बहुत असाधारण कार्य किए थे, इसके लिए वो भगवान को महानता को जानते थे, तो बोले अभी कुछ नहीं करना है, उनका शरण में जाना है, शिष्य तो अभी स्वीकार कर लिया। अभी जो संवाद चल रहा है गुरु और शिष्यों के बीच में संवाद चल रहे हैं, गुरु शिष्यों के बीच में जो संवाद होता है वो बहुत गंभीर होता है, मजाक नहीं होता है। मित्र मित्र के बीच में मजाक चलता है, पति पत्नी के बीच में मजाक चलता है, लेकिन गुरु शिष्यों के बीच में कभी मजाक नहीं चलते। अभी क्या है, गंभीर विषय वस्तु के ऊपर चर्चा होगा। और इस अध्याय का शंकराचार्य ने नाम दिया सांख्य योग। हमारा जो बंगाली संस्करण है उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें सब ऐसे ही लिखा है। पहला अध्याय का नाम देखेंगे अर्जुन विषाद योगी लिखा है, दूसरा अध्याय का नाम देखेंगे सांख्य योग भी सांख्य योग लिखा है। जो कोई बंगाली पढ़ता है, बंगाली हमारा संस्करण देख सकते हैं, उसमें सांख्य योग लिखा है, अर्जुन विषाद योग लिखा है। और लेकिन प्रभुपाद ने उसका नाम क्या दिया, युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, वो पूर्वांग है। और हमारा जो बलदेव विद्याभूषण वो बोलते हैं ये पूर्व अंग होने के कारण, युद्ध से पहले ज्ञान देने से पहले बोला ये नाम सार्थक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है ना, ये जो नाम है भी सार्थक है। और इस अध्याय का प्रभुपाद ने और हमारा पूर्ववर्ती आचार्य ने नाम दिया गीता सार। तो हमारा जो वैदिक सार का जो ज्ञान जो है उसका सार को तीन विभाग में विभाजन किया गया है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध और भगवान और हमारे बीच के क्या संबंध है, इसको सांख्य योग शंकराचार्य इसके लिए दिया, जिस प्रकार इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद बताते हैं, इसमें जड़ और चेतन वस्तु के बीच में जो भेद को बताता है वो सांख्य योग बोलते हैं, संख्या की गणना द्वारा। और इससे पहले इस अध्याय में भगवान ने पदार्थ और आत्मा के बीच में भेद को बताया है, इसके लिए वो संबंध के बारे में सूचित करता है। फिर 40वां श्लोक में भगवान नेहावे क्रमि नाशस्ति प्रत्यवयना विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयो, वो श्लोक जो है वो अभिदय का सूचक है। वो बोलता है आप अगर थोड़ा भी भक्ति करते हैं तो उसमें कोई क्षति नहीं है और उसका कोई ह्रास नहीं होता है, और वो क्या करता है आपको बड़े से बड़े सहायता करते हैं, बहुत से बड़ी विपत्ति से आपको रक्षा करता है। क्या विपत्ति से रक्षा करते हैं, हमारा पूर्ववर्ती आचार्य लोग उसके ऊपर लिखे हैं। वो बोले कम से कम आपको किसी नीच योनि से, मनुष्य से नीच जो योनि है उसमें जाने का संभावना नहीं है। आप अगर थोड़े भी कुछ भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं तो आपका अगला जीवन मनुष्य का सुनिश्चित है, जिससे कि फिर से आपको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। फिर 51 श्लोक में, 51 श्लोक में उसका क्या बताया गया है, प्रयोजन के बारे में बताया गया है। जो 51 नंबर श्लोक है, इस तरह भगवत भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं, इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। प्रयोजन क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना या भगवत धाम जाना। तो इस अध्याय में संबंध ज्ञान अभिधेय प्रयोजन तीनों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके लिए उस अध्याय को गीता का सार के भी अध्याय सार्थक है, क्योंकि उसमें संबंध ज्ञान अभिधेय ज्ञान प्रयोजन तीनों ज्ञान का बारे में वर्णन है। इसके लिए इस अध्याय का नाम गीता सार भी सार्थक है। और अभी यहाँ पर जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो विद्वान होता है वो क्या करता है, जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तो ये आत्मा नित्य है और शरीर का हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। मृत्यु क्या है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करने को जन्म बोलते हैं और शरीर को छोड़ना मृत्यु कहते हैं। तो बोलते हैं मृत्यु के लिए शोक नहीं करना है, क्योंकि मृत्यु अनिवार्य है। इस अध्याय के प्रथम अध्याय के तीसरा श्लोक में बता क्या एक श्लोक है, दुर्योधन अपना गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके बोलते हैं, पश्यतम पांडु पुत्रेण आचार्यम हितो चिमम विवृदौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इसका तात्पर्य में प्रभुपद लिखते हैं, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य उसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने की कोई झिझक नहीं हुए। वो धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडव के पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। समझ में आ रहा है? तो ये जो पांडव पक्ष का जो सेनापति था वो धृष्टद्युम्न था। और ये मैं बता रहा हूं जो महाभारत से ये प्रसंग है कि किस प्रकार जो विद्वान होता है वो जानते हैं कि जन्म लिया तो वो मृत्यु सुनिश्चित है, उसके लिए वो कभी विचार नहीं करते हैं। तो ये जो द्रौपदी महाराज थे उनका पिताजी का नाम था पुरुषद, वो बहुत बड़े राजा थे। और ये द्रोणाचार्य का जो पिताजी थे उनका नाम था भरद्वाज। पुरुषद और भरद्वाज दोनों मित्र थे और राजा पुरुषद अपना पुत्र द्रौपद को भरद्वाज के पास अब युद्ध कला सीखने के लिए जो विद्या सीखने के लिए उनका गुरुकुल में भेजे थे। तो ये जो द्रोणाचार्य और द्रौपद थे एक ही गुरुकुल में भरद्वाज का गुरुकुल में पढ़े और दोनों सहपाठी थे तो दोनों में अच्छा मित्रता थी। लेकिन ये जो भरद्वाज थे बहुत गरीब थे, तो इनका गरीबी तक देखकर द्रौपद हमेशा बोलते थे द्रोणाचार्य को, बोले चिंता मत कर, मैं जब भी राजा होऊंगा ना तुमको आधा राज्य दे दूंगा, चिंता मत कर। तो जब भी जैसा समय बीतता गया, विद्या अध्ययन पूरा हुआ और दोनों ये आश्रम में रहने लगे अपना पिताजी का, वो अपना पिताजी का राज्य में गए। अभी जब राजा पुरुषद शरीर छोड़ दिए, उनका देहांत हो गया, तो द्रौपद राजा हो गए और भरद्वाज का शरीर छोड़ने पर उधर ही द्रोणाचार्य रहने लगे और उनका विवाह कृपाचार्य का बहन कृपी से हुआ और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा अपना मित्रों के साथ खेल रहा था, ब्राह्मणों का समाज था, ब्राह्मणों का सब घर था। तो बाकी सब ब्राह्मणों के पास जो गाय थे गाय था तो गाय को दूध दूते थे, अपने बच्चे लोगों को पिलाते थे। तो इनके पास कोई गाय नहीं था, इतना निर्धन थे गाय भी नहीं रख सकते थे। तो एक दिन देख रहे थे, वो दूध पीने के लिए वो इच्छा प्रकट किया, कौन अश्वत्थामा। तो उनका मित्र लोग ये चावल में थोड़ा पानी डाल के, वो सफेद सफेद दिखता है ना, तो उनको पिलाया। किसको? अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा में दूध पी लिया बोल के खुशी से नाच रहा था। तो उनका पिताजी द्रोणाचार्य को देख के बहुत दुख हुआ, बोला मैं इतना निर्धन व्यक्ति हूं कि मेरा पुत्रों के लिए दूध की व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूं, एक गाय भी नहीं रख सकता हूं। तो उनका बहुत ग्लानी हुआ, दुख हुआ। तो उनका याद हुआ, स्मरण हुआ कि मेरा मित्र द्रौपदी अभी राजा है, वो जब भी हम सौपट्य विद्या अध्ययन कर रहे थे वो हमेशा बोलता था तू आ जा तुझे मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो अपना मित्रों के पास गए, अपना पत्नी और बच्चे को लेके, बोले मुझे पहचाना? तो बोला द्रौपदी, बोला मैं पहचाना नहीं, बोला मैं द्रोणाचार्य हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे ना गुरुकुल में, और आप बोला था कि जब भी मैं राजा होऊंगा तो मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। बोला ब्राह्मण तुम बहुत अनुभवी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। बोला मित्रता सम्मान में होता है, तभी दोनों हम विद्यार्थी थे इसके लिए मित्रता था। बोला अभी मैं धनी हूँ और तुम दरिद्र ब्राह्मण है, अभी हमारा मित्रता कैसा हो सकता है? वो बोला तुम ब्राह्मण हो, मेरा दरबार में आए हो, मेरे पास आए हो, चार पांच दिन दस दिन जितना है रहो, जो इच्छा है खा लो फिर जाओ। तो जब भी एक अपना कोई निकट संबंधी ऐसा बात बोलता है ना, वो हृदय को और आघात कर लेता है। द्रोणाचार्य को ये बात है ना, बहुत उनका हृदय में बाण की मत भीत गया। तो उतने में उनको सुनाया दिया कि परशुराम सब दान दे रहे हैं। तो परशुराम के पास गए, बोले मैं कुछ आशा से आपके पास, दान की आशा से आया हूँ। बोला आपको पहले आना चाहिए था, मैं तो सब संपत्ति सब बांट दिया, जितना बच्चा था बाकी सब कश्यप को दे दिया, अभी मेरा पास धन कुछ नहीं है, विद्या है, अस्त्र विद्या है, चाहे तो वो ले सकते हो। बोला ठीक है, वही अस्त्र विद्या ही सिखा दो। तो परशुराम ने सब द्रोणाचार्य को अस्त्र विद्या सिखा दिए। अस्त्र विद्या सीखने के बाद वो आए हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में आए, अपना साला के पास रहे, कृपाचार्य उधर ही उनका गुरु थे रहे। तो एक दिन देखे कि ये जो पांडव और कौरव का बच्चे लोग छोटे छोटे थे, और बाहर वो गेंद खेल रहे थे, गेंद समझना बॉल खेल रहे थे, और बॉल कुआं में गिर गया, और सब लोग निकालने का प्रयास कर रहे थे, उसका मुंह देख रहा था, उसका मुंह देख रहा था, सब लोग चेष्टा किए, कोई भी एक भी नहीं निकल पाया, हताश हो गए, अब खेलना है और बॉल कुएं में गिर गया। फिर देखे कि थोड़ी दूरी में द्रोणाचार्य ये कर रहे थे, बच्चे लोग उनके पास जाके वो बोले कि वो उनके पास खड़ा हो गए सब। वो तो बोले बच्चे लोग क्या हुआ, वो देख रहे थे फिर भी पूछे बच्चे लोग क्या हुआ। बोला हमारा बॉल गिर गया। बोला तुम कैसा क्षत्रियो का बच्चे लोग, कुएं से एक बॉल भी नहीं निकाल सकते हो, क्या तुम्हारा शक्ति है? बोला देखो मैं कैसे निकलता हूँ। फिर वो गए, अपना अंगूठी भी, अंगूठी होता है ना, अंगूठी अंगूठी निकाल के कुएं में डाल दिए। फिर बोल तुम्हारे पास सिक्का है? बोला है, निकालो। दो सिक्का निकाले, उसमें मंत्र में अभिनव मंत्र किए, कुएं में फेंके, तो सिक्का को लग के गेंद भी आ गया और अंगूठी भी आ गया। बच्चे लोग बोले आश्चर्य विद्या है। फिर बोले पूछे आप कौन है, आपका नाम क्या है? वो बोला आइए हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भोजन कराएंगे। वो बोला मैं ब्राह्मण भोजन करने के लिए नहीं आया हूँ, आप खाली ये बात जाके भीष्म पितामह को बता दो। तो उन्होंने जाके तुरंत ही भीष्म पितामह को ऐसे ऐसे घटना हुआ बोल के, भीष्म पितामह समझ गए कि द्रोणाचार्य आ गए। गए उनको प्रणाम किए, वो बोले स्वागत है आपका, क्या सेवा कर सकता हूँ? वो बोले उनने बोला मैं उनका क्या अवस्था है बता दिया कि मैं ऐसा गया था, मेरा बच्चे को दूध के लिए द्रौपदी से ऐसा किया। बोला आप क्यों उनके पास गए, हमारा इधर रहिए, हमारा सब संपत्ति आपका है, हमारा बच्चे लोग आप धनुर्विद्या सिखाइए। बोला ठीक है। उनने फिर ये कौरव पांडव लोग को धनुर्विद्या सिखाए, लेकिन उनका उद्देश्य था कि इनको सिखाने के बाद उनको द्रौपदी को हरा के हराऊंगा, उद्देश्य किया था उनको द्रौपदी को हराना है। फिर जब युद्ध कला सब बच्चे लोग सीख गए, बोले आज मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ चाहिए। बच्चे लोग बोले हाँ गुरु जी बताइए बताइए क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। बोला ये पांचाल का राज्य का राजा थे द्रौपद, बोला उनके ऊपर आक्रमण करना है, उसको मारना नहीं है, उसको जिंदा पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो कौरव लोग बोले हम लोग पहले जाएंगे, पांडव लोग पीछे हो गए, बोले ठीक है आप ही जाओ। द्रौपद महाराज भी महारथी थे, तो जैसे इन लोग सबको परास्त करके परास्त कर दिए, परास्त करके भाग के आ गए। फिर पांडव लोग गए फिर अर्जुन ने महाराज द्रुपद को बंदी बना लिया। और भी आक्रमण कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज बोले बाकी सैन्य को मारने का आवश्यकता नहीं, गुरु ने हमको वो नहीं बोला, उन्होंने बोला द्रौपद को राजा को बंदी बना के लेके आओ, हमने राजा को परास्त करके बंदी बना के लेके गए, अभी किसी को मारो मत। फिर द्रौपद को द्रोणाचार्य के सामने बंदी बना के लेके आए, बोलो अभी पूरा राज्य मेरा है ना, तुम्हारे हमारा साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण आदमी हूं ना। बोला ये आधा राज्य तुमको देता हूं दान में, अभी तो बराबरी मित्रता हो गया ना, मैं राजा हूं लेकिन तुम्हें भी आधा राज्य देता हूं, तुम मेरा मित्र सहपाठी रह चुके हो, इसके लिए बोला तुम दक्षिण भाग का तुम राजा रहो, उत्तर का मैं रहूंगा, अभी तो मित्रता होगा ना तुम्हारा मेरा। बोला हाँ, बोला अभी उधर मान के द्रौपदी चले गए, लेकिन उनका ये जो है ना दुर्व्यवहार, उनका मन में विचार चलता रहा और बोले मैं द्रोणाचार्य को मारने वाला लड़का मुझे चाहिए। तो उन्होंने फिर गए एक ब्राह्मण की बस्ती में, ब्राह्मण में बस्ती में गए, उधर दो भाई थे याज और उपयाज बोल के, छोटा भाई का नाम उपयाज था, बड़ा भाई का नाम याज था, और उपयाज का बहुत सेवा किए, एक दो साल तक सेवा किए, सेवा से खुश हो गया, बोला आप क्यों मैं हमारा सेवा करना कर रहे हैं, इतना कुछ चाहिए तो बोलिए। तो बोले सुनो ऐसा यज्ञ करो, ऐसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए जो द्रौपदी को मारने वाला हो, और मैं तुम्हें 10 करोड़ गाय दूंगा, दक्षिणा में 10 करोड़ गाय दूंगा, यज्ञ संपन्न करो जिससे कि यज्ञ से पुत्र प्रकट होगा जो कि द्रोणाचार्य को मारने वाला होगा। उपयाग बोला, जैसे अर्जुन यहां पर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उपयाग भी थोड़ा कम विद्वान था, तो वो बोला मैं नहीं कर सकता हूं, वो भी ब्राह्मण को मारने के लिए यज्ञ गुरु, वो बोला मैं नहीं कर सकता हूं। बोला मेरा भाई यज्ञ है ना यज, वो बहुत बड़ा विद्वान है, आप उसके पास जाके आप अभिप्राय बताइए, वो शायद कुछ कर सकता है। फिर महाराज द्रुपद गए, एक साल तक उनका बड़ा भाई यज का सेवा किए। फिर वो बोले क्यों सेवा कर रहे हो, कुछ तो अभिप्राय होगा, अभिप्राय बताइए। तो वो बोला कि मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र चाहिए। तो वो दक्षिणा बोला, बोला दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, आप बोला मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा। तो द्रुपद महाराज को आश्चर्य हुआ, बोला तुम्हारा छोटा भाई तो मना कर रहा था, वो जो तर्क बोला वो भी सही है, ब्राह्मण को मारने के लिए क्यों हम क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न करें यज्ञ में, लेकिन आपने कैसा तुरंत ही राजी हो गए। तो याग यहां पर ये जो सिद्धांत अभी भगवान बता रहे हैं ना, याग द्रौपद महाराज को ही सिद्धांत बताया, बोला जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और भगवान का द्वारा अगर निर्धारित की गई है द्रौपद का पुत्र ही अगर द्रोणाचार्य को मारेगा तो किसी भी अवस्था में ऐसा ही होने वाला है। बोला अगर भगवान ने ऐसा निर्धारित किया है, अभी हम ये बात को है ना, खाली एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, जानकारी, तो हमें क्या होता है उस अनुभव नहीं होता है, अपना जीवन में आचरण नहीं होता है। जैसे हम बोलते प्रारब्ध कारण दुख आता है, तो अभी जैसा जैसा अभी कोरोना आरंभ हुआ था ना, तो हमारा ये कोरोना को मात देने के लिए हमारा एक टीम बनाया गया था, उसका जो चेयरमैन थे मुझे बता रहे थे कि बोले मुझे 2-3 लोगों के ऊपर ये बहुत चिंता है, 2-3 जो वयोवृद्ध हमारा वैष्णव है 70 साल के ऊपर के है, उनके लिए मुझे बहुत चिंतित है, और उनको छींक भी नहीं आया, प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो आएगा नहीं, भगवान का द्वारा अगर उसका निर्धारित नहीं किया तो आएगा ही नहीं आपको। और हमारा जो नवयुवक वैष्णव थे सब बीमार हो गए और बहुत सारे जो हॉस्पिटल का बिल आ गया, और जिनके लिए उन लोग बहुत चिंतित थे उनको छींक भी नहीं आया, और 80 साल के ऊपर है, बताइए। हम ऐसा जानकारी है, प्रारब्ध बोल सकते हैं, हमको थ्योरेटिकल नॉलेज हो सकता है, लेकिन उसका रियलाइजेशन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस बड़ी बात है। तो मैं बोला ये प्रारब्ध का जो आप बताते हैं खाली आपको जानकारी है, ना उसको अनुभव है, ना उसको ये है जीवन में आचरण है। तो यज्ञ बोला देखो अगर भगवान का द्वारा निर्धारित की गई है, द्रौपदी का लड़का ही तुमको मारने वाला है तो मारेगा ही है। तो उन्होंने फिर क्या किया, यज्ञ संपन्न किया, उस यज्ञ से ही ये धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ। प्रकट हुआ तो द्रुपद महाराज जानते थे कि ये सबसे अस्त्र कला अच्छा जानते हैं, कौन, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को स्वागत किया, बोला मेरा मित्र और ब्राह्मण देवता आइए, इसका नामकरण कीजिए और उसको युद्ध कला सिखाइए। द्रोणाचार्य, आप महाभारत में आदि पर्व में वर्णन है, द्रोणाचार्य जानते थे कि ये जो यज्ञ करके उत्पन्न किया गया लड़का मुझे मारने वाला है, अगर भगवान के द्वारा बनाई गई ये जो नियम है यही लड़का मुझे मारेगा, अगर मैं उसको शिक्षा नहीं दूं और कहीं भी सीखे मुझे मारने वाला है, तो उससे अच्छा मैं ही उसको शिक्षा दूं ना। और यहाँ पर तात्पर्य में आप पढ़ रहे ना, ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य जी ऐसा कोई विद्या उसको कम शिक्षा दिया, और जितना उनको विद्या धनुर्विद्या पता था सब जानकारी दे दिया, और उस विद्या की कला के ऊपर ही वो सेनापति था, किसका, मुख्य सेनापति था पांडव लोक का, और उसी शिक्षा के अंतर्गत ही पूरा व्यूह रचना किया था। तो इसको बोलते हैं अनुभव ज्ञान। जो पंडित होता है वो मना कर सकते नहीं, ये मारने वाला मैं क्यों सिखाऊं, वो ब्राह्मण थे विद्वान थे, कौन, द्रोणाचार्य, इसके लिए धृष्टद्युम्न को सिखाया। याज ने इसके लिए यज्ञ करके पुत्र उत्पन्न किया, अगर भगवान ने निर्धारित किया है इसके जो यज्ञ में उत्पन्न पुत्र ही वो इसको मारेगा तो वो होने वाला है। महाभारत में ऐसी अनेक कथा है, क्योंकि ये महाभारत के ये भाग है गीता, इसके लिए बता रहा हूं। इसके लिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जो विद्वान होता है उसको ये जानकारी होता है, अगर भगवान की द्वारा निर्धारित कही किसी को किसी के द्वारा मरना है तो ऐसे ही होगा, और भगवान ही सभी कारणों का कारण है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, श्रेय अपना दूसरे को देते हैं। भगवान तो सबसे बड़े यशस्वी है ही, लेकिन भगवान ये सब जो अपना यश दूसरे को बांटते हैं। अभी किसी को भी साधारण पूछो तुमको पाल पोस के कौन बड़ा किया, सब लोग माँ बाप, माँ बाप केवल निमित्त हो सकते हैं, असली पालक भगवान है। माँ की स्तन में दूध पहले नहीं आता, ये बाद में भी नहीं आता, पहले भी नहीं आता है। बच्चा जब भी अन्न खाने को योग्य नहीं होता है तभी उनका माँ का स्तन में आता है। कौन देते हैं माँ का स्तन में दूध, कौन भरता है, भगवान। लेकिन किसको, माँ को निमित्त बनाते हैं। माँ का जब गर्भ में भी रहता है तभी कैसा माँ पालन करेगा, नहीं, भगवान व्यवस्था किए हैं, उसका नाभि से एक नाड़ी लगी होती है, उसमें से कुछ जाता है वहां पे भी उसका पालन पोषण होता है। ये व्यवस्था कौन करते हैं, भगवान करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं। ऐसे भी मृत्यु आना है, जिसको निमित्त बनाएंगे और जैसे निमित्त बनाएंगे वैसे ही होने वाला है। फिर अगला बार और एक महाभारत की कथा बताऊंगा, अभी समय हो गया है। तो ऐसे ही है, कोई ना कोई निमित्त बनेगा, लेकिन जो विद्वान है इस बात को जानते हैं। मृत्यु है, हार्ट अटैक होने दो आपको, कुछ भी कुछ, वो बहाना है केवल। आपको उस समय अगर मृत्यु लिखा है, आप कहीं भी रहिए मृत्यु आएगा ही आएगा, आपको उसे बच नहीं सकते हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है, उसको करके कथा आपको विराम देंगे। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो जगन्नाथपुरी का है, भगवान जगन्नाथ को मनुष्य लोक से पहले देवता लोक के लिए दर्शन होता है, देवता लोक के बाद मनुष्य लोक के लिए खोलता है। आप जो जगन्नाथपुरी में कब जाएंगे, हमारा मुख्य पुजारी महोदय राम रूप को पूछ सकते हैं। राम रूप जा प्रभु हमारा मुख्य पुजारी महोदय जाके पूछे पंडा जी को, बोले भगवान का मंगल आरती कितना बजे है, कितना बजे दर्शन होगा। वो बोला भगवान जब भी दर्शन देंगे तब होगा। क्या बोले, जब भी भगवान दर्शन देंगे तब होगा। तो वहां कोई मंगल आरती का टाइम नहीं है, वहां पर जो हमारा दर्शन आरती कितना बजे होता है, 7:15 बजे, और वहां के श्रृंगार आरती कितना बजे होता है पता है, रात को 12:30 बजे। उसको बड़ा श्रृंगार बेस बोलते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं भगवान रासलीला में भागने के लिए जाते हैं, ड्रेसिंग होके ना जाते हैं। तो आते हैं विलंबे तो विश्राम करते हैं, तो उनका जब भी विश्राम पूरा होगा उठते हैं। तो वहां पर वो जो पट होता है, वो पट जाके वो पुजारी आवाज देके खोलने का प्रयास करेंगे, खुल गया इसका मतलब भगवान उठ गए, नहीं खुला तो फिर 15 मिनट के बाद फिर जाके प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? तो भगवान जब भी दर्शन देंगे तभी दर्शन होगा, क्योंकि मनुष्य लोक को दर्शन देने से पहला भगवान देवता लोक को दर्शन देते हैं। तो देवता लोक का दर्शन चल रहा था तो यमराज को थोड़ा विलंब हो गया, वो दौड़ दौड़ के आ रहे थे। तो गरुड़ खम का पास में देखे एक चिड़िया बैठा हुआ है, उनका नजर गिर गया। और भगवान का नियम के अनुसार कुछ समय के बाद सर्प दंशन से उसका मृत्यु है। क्या है, कुछ समय के बाद पक्षी को सर्प दंशन से उसका मृत्यु है। वो देख लिए तो जाके विचार कर रहे हैं कि ऐसा भगवान नियम बनाते हैं, लिख दिए हैं कि उसका सर्प दंशन से मृत्यु है, और ये आके वो गरुड़ के पास बैठा हुआ है, ये तो समझो निषिद्ध क्षेत्र है, यमराज का उधर राज नहीं है, कैसा अभी उसका मृत्यु होगा, फिर हम आत्मा को उसको बांध के लेके जाएंगे। कैसे भी भगवान ऐसा सोच सोच के दर्शन करने के लिए गए। जैसा पक्षी देखा कि वो यमराज को नजर गिरा, वो पक्षी डर गया, गरुड़ जी को बोला वो व्यक्ति जा रहा था, थोड़ा काला कलूटा था, थोड़ा देखने में कैसा कैसा लग रहा था, मुझे बहुत कोप दृष्टि से देख रहा था, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। तो गरुड़ जी बोले तुमको कोई चिंता करने का बात नहीं है, हम आपको बहुत सुरक्षित जगह में रख देंगे। फिर गरुड़ जी उसको उठा के एक गुफा में रखे, वो आए वो गुफा में सर्प था, डसा और मर गया। फिर यमराज आए, देखे कि उधर पक्षी नहीं है, फिर गरुड़ जी के पूछे एक पक्षी था, क्या हुआ, कुछ समय पहले मैं दर्शन करने से जाने से पहले तो पक्षी था, अभी क्या हुआ। बोला आप जानने के पहले था, अभी कहां पे, हमें कुछ जानकारी नहीं है। और दर्शन करके बाहर आते हैं तो यमदूत आके फिर बोलते हैं, बोला आपने जो आदेश दिया था वो पक्षी का सर्प दर्शन से मृत्यु हो गया और हम उसका आत्मा को लेके आ रहे। तो यमराज को आश्चर्य हो गया, बोला भगवान ने जिसका मृत्यु जिस माध्यम से कराना है लिखे हैं वो बदलेगा नहीं, ऐसे ही होगा। तो यहां पर इसके लिए बताते हैं, बता रहे हैं भगवान, आप ये जो सोच रहे हैं ये सब मर जाएंगे तो क्या होगा, अगर उसका मृत्यु जिस विधि से लिखना है ऐसा होगा, इसके लिए जो पंडित लोग होते हैं इसके लिए शोक नहीं करते हैं। भगवान का इस श्लोक में कहने का अर्थ है। इसके बाद भगवान फिर ये शरीर और जो आत्मा में भेद, जड़ और जो चेतन में भेद के बारे में फिर वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।